लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे पीड़ित बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो बेघर, अनाथ और युद्धों के शिकार हैं, ताकि उन्हें शिक्षा तक पहुंच की गारंटी और पारिवारिक स्नेह का अनुभव करने का अवसर दिया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और फादर दिलीप संजय एक्का। श्रोताओं, मिस्र के तटीय शहर शर्म अल शेख में यूएन के वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP27 में 35,000 से अधिक लोग जुटे, जिनमें सरकारी अधिकारी, पर्यवेक्षक, नागर समाज व अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस बैठक के दौरान गैर सरकारी संस्थाओं के लिए नेट शून्य उत्सर्जन संकल्पों पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह द्वारा पहली रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में हरित लीपापोती और कमजोर नेट शून्य संकल्पों की निंदा की गई, साथ ही उद्योगों, वित्तीय संस्थाओं और शहरी क्षेत्रों द्वारा लिए जाने वाले नेट शून्य संकल्पों में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के इरादे से एक रोड मैप प्रदान किया गया है। COP27 जलवायु सम्मेलन में 20 नवंबर को स्थानीय समय अनुसार रविवार तड़के एक महत्वपूर्ण समझौते पर अंततः सहमति बन गई, जिसके तहत जलवायु जनित आपदाओं से प्रभावित निर्बल देशों में होने वाली हानि व क्षति के लिए मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही दो हफ्तों से जारी गहन चर्चा के बाद यूएन का वार्षिक जलवायु सम्मेलन समाप्त हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने अपने एक वीडियो संदेश में कहा, इस COP27 ने न्याय की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। मैं हानि व क्षति कोष स्थापित किए जाने और आगामी दिनों में उसे क्रियान्वित किए जाने के निर्णय का स्वागत करता हूं। उन्होंने शर्म अल शेख में सम्मेलन स्थल से संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु संकट से अग्रिम मोर्चे पर जूझ रहे लोगों की आवाजों को सुना जाना होगा। COP27 के दौरान जलवायु आपदाओं से होने वाली हानि व क्षति और इसके मद्देनजर धनी देशों द्वारा निर्बल देशों के लिए वित्त पोषण सबसे अहम मुद्दे के रूप में छाया रहा। विकासशील देशों ने हानि व क्षति कोष की स्थापना के लिए मजबूती से बार बार अपील की है, ताकि उन लोगों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जा सके जिन्होंने जलवायु संकट में बहुत कम योगदान दिया है, मगर जो इसके प्रभावों से सबसे अधिक जूझ रहे हैं। महासचिव ने कहा, स्पष्ट है कि यह पर्याप्त नहीं होगा, मगर टूटे हुए भरोसे को फिर से निर्माण करने के लिए यह एक अति आवश्यक राजनैतिक संकेत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली इस मार्ग पर हर कदम पर प्रयासों का समर्थन करेगी। COP27 के अध्यक्ष सामेह शुक्री ने प्रतिनिधियों को बताया कि ये निर्णय एक प्रवेश द्वार है, जिनसे क्रियान्वयन का दायरा बढ़ेगा और कार्बन तटस्थता और जलवायु सहन सक्षम भविष्य की ओर दिशा में बढ़ पाना संभव होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने काला सागर अनाज निर्यात पहल के नवीनीकरण यानी विस्तार का स्वागत किया, जिसकी मौजूदा अवधि 19 नवंबर को समाप्त हो गई। इस पहल पर संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता प्रयासों के फलस्वरूप जुलाई 2022 में सहमति बनी थी और इसे क्रियान्वयन की देखरेख में एक संयुक्त समन्वय समिति JCC करती है। इस समिति में रूस, यूक्रेन, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल हैं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं शिवानी काला।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने काला सागर अनाज निर्यात पहल की नवीनीकरण यानी विस्तार का स्वागत किया है। महासचिव गुटेरेस इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मौजूद थे। और शर्म अल शेख में COP27 जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले काहिरा से एक वीडियो ट्वीट संदेश में अपना आभार प्रकट किया और कहा कि इस्तांबुल में इस समझौते पर सहमति से वे अत्यंत प्रेरित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने रूसी खाद्य और उर्वरकों के बेरोक निर्यात के लिए शेष बाधाओं को खत्म करने के लिए अपनी गहरी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है और अगले साल के दौरान खाद्य संकट से बचने के लिए ये और बहुत आवश्यक है। यूएन प्रमुख ने इस्तांबुल को ठोस समस्याओं को हल करने के लिए एक विवेकपूर्ण कूटनीति का आवश्यक केंद्र बताया है। उन्होंने तुर्की के लोगों की उदारता और अति प्रभावी प्रतिबद्धता के लिए गहरा आभार व्यक्त किया। महासचिव गुटेरेश ने एक अलग वक्तव्य में जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र इस पहल के संयुक्त समन्वय केंद्र यानी JCC का पूरा समर्थन देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस पहल में यूक्रेन से जहाजों की आवाजाही की देखरेख की जाती है ताकि महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइन सुचारू रूप से अपना काम करती रहे।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कासावा कोरोसी ने सुरक्षा परिषद के सुधारों के विषय पर अंतर सरकारी वार्ता प्रक्रिया की अगुवाई के लिए कुवैत के स्थायी यूएन प्रतिनिधि राजदूत तारिक अल्बनाई और स्लोवाकिया के स्थायी प्रतिनिधि मिशाल मिलनार को सह प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार का प्रश्न यूएन की विश्वसनीयता और प्रासंगिकता से जुड़ा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
यूएन महासभा प्रमुख कसाबा कोरोसी ने गुरुवार को सुरक्षा परिषद का विस्तार किए जाने और उसे अधिक समानतापूर्ण बनाए जाने पर केंद्रित एक बैठक को संबोधित किया। इसके बाद महासभा अध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि शांति व सुरक्षा मुद्दों पर सुरक्षा परिषद यूएन का सबसे शक्तिशाली निकाय है। यदि सुरक्षा परिषद में सुधार प्रयासों की अगुवाई महासभा ने नहीं की तो यूएन की विश्वसनीयता और प्रासंगिकता सवालों के घेरे में होगी। फिलहाल सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पास वीटो अधिकार है। किसी भी एक स्थायी सदस्य देश द्वारा इस अधिकार का इस्तेमाल किए जाने से किसी भी प्रस्ताव को पारित होने से रोका जा सकता है। सुरक्षा परिषद के 10 अन्य अस्थायी देश अपने 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए क्षेत्रीय आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं। यूएन महासभा अध्यक्ष ने कहा कि बढ़ती संख्या में देश अब सुधारों की मांग कर रहे हैं। ये सवाल पिछले 43 वर्षों से यूएन महासभा के एजेंडे पर है। कसाबा कोरोसी ने प्रतिनिधियों को बताया कि महासभा को जल्दी ये तय करना होगा कि इस विषय पर किस तरह आगे बढ़ा जाएगा। महासभा अध्यक्ष ने सुरक्षा परिषद में सुधारों के विषय पर अंतर सरकारी वार्ता प्रक्रिया की अगुवाई के लिए यूएन में कुवैत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत तारिक अल्बनाई और स्लोवाकिया के स्थायी प्रतिनिधि मिशाल मिलनार को सह प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य व देखभाल कर्मियों और डायबिटीज के साथ जीवन गुजार रहे आम जन के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा की सुलभता बढ़ाने का आग्रह किया है ताकि सर्व जन के लिए उनकी पहुंच के भीतर आवश्यक देखभाल सुनिश्चित की जा सके। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
विश्व भर में 42 करोड़ 20 लाख लोगों को मधुमेह है और ये रोग हर साल सीधे तौर पर 15 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार है। सबसे अधिक मामले टाइप 2 डायबिटीज के दिखाई देते हैं जो कि अक्सर शरीर में इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध बढ़ने की वजह से पैदा होता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है डायबिटीज संबंधी शिक्षा की सुलभता। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 9 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को डायबिटीज होने का अनुमान है जबकि 9 करोड़ से अधिक लोगों में इस बीमारी की शुरुआती अवस्था के लक्षण दिखाई दिए हैं। स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए कार्यालय ने डायबिटीज की चुनौती पर पार पाने के लिए 4 अहम उपायों पर बल दिया है। पहला, देखभाल सेवा कवरेज में मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए समयबद्ध लक्ष्यों को स्थापित किया जाना। दूसरा, कारगर, किफायती और संदर्भ के अनुरूप उपयुक्त उपायों की पहचान करते हुए उन्हें अमल में लाया जाना होगा। तीसरा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूती प्रदान करनी होगी ताकि समय पर निदान, जांच और गुणवत्तापरक देखभाल बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध व सुलभ हो। चौथा, देशों को राष्ट्रीय पैकेज में अति आवश्यक दवाओं और प्राथमिकता वाले उपकरणों की सुलभता को बढ़ावा देना होगा जिनमें इंसुलिन भी शामिल है।
आज के सभी विषय UN हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
तूने मुझे पुकारा, मैंने सुनी तेरी वाणी। तूने मुझे पुकारा, मैंने सुनी तेरी वाणी। आकर तेरे बाते सुन रहा है दास तेरा। तूने मुझे पुकारा, मैंने सुनी तेरी वाणी। तूने मुझे पुकारा, मैंने सुनी तेरी वाणी। वचन का प्रसाद मैं करूंगा सदा, तेरे प्रेम का प्रचार जग में फैलाऊंगा मैं। दे दे प्रेम तेरा और नहीं कोई चार। तूने मुझे
आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पश्चिम जावा में आए भूकंप की स्थिति से उबरने हेतु यूनिसेफ इंडोनेशियाई सरकार की सहायता कर रही है। इंडोनेशिया के चियांजूर प्रांत में हाल ही में 5.6 की तीव्रता से आए भूकंप ने कई परिवारों को तबाह कर दिया है। नवीनतम आधिकारिक अनुमानों के अनुसार 24 नवंबर तक 15 साल से कम उम्र के करीबन 100 बच्चों ने इस जलजले में अपनी जान गंवाई है। इस भूकंप में अब तक मरने वालों की संख्या 272 बतलाई जाती है। स्थानीय समाचारों के अनुसार भूकंप में करीबन 2046 लोग घायल हुए हैं। 39 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 62,872 लोग विस्थापित हो गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता बढ़ाया गया है। खोज और बचाव अभियान में लोगों की जरूरतों का सही हाल पता चल रहा है। भूकंप के कारण देश में आपातकालीन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिन बच्चों और परिवारों ने अपने प्रिय जनों को खो दिया है, जो विस्थापित या घायल हो गए हैं, उन्हें आश्रय, स्वच्छ पानी, चिकित्सा सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराने की शीघ्र कोशिश की जा रही है। इंडोनेशिया सरकार चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों और समुदाय के लिए आपातकालीन सेवा का मुहैया करा रही है। यूनिसेफ और उसके सहयोगी संस्थान बच्चों और उनके परिवारों को अति जरूरत की चीजों को उपलब्ध कराने में मदद कर रहे हैं। वहीं उधर सर्दी के शुरू होते ही करीबन 28 मिलियन अफगानी लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता वापसी से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता बाधित हुई, जिसके कारण देश को आर्थिक और मानवीय उथल पुथल का सामना करना पड़ा है। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान की स्थिति की एक तस्वीर पेश की, जिसमें निराशजनक मानवीय स्थिति पर प्रकाश डाला गया, जिसके अनुसार सर्दी के शुरू होते ही लाखों लोगों के दैनिक जीवन की स्थिति बदतर हो जाएगी। इसका अनुमान लगाया गया है कि 28 मिलियन से अधिक लोग, जो अफगानिस्तान की पूरी आबादी का 2/3 हिस्सा है, को मानवीय सहायता की आवश्यकता होगी, जो कि पिछले 2 साल पहले की तुलना में 18 मिलियन से अधिक है।
महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1981 से प्रतिवर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन संत पापा हमें याद दिलाते हैं कि हमारी मानवता का स्तर इस बात से मापा जाता है कि हम महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकने और खत्म करने में मदद करना है। यह दिन जागरूकता बढ़ाने, वकालत को बढ़ावा देने और चुनौतियों एवं समाधानों पर चर्चा के अवसर पैदा करने के लिए वैश्विक कार्रवाई की मांग करता है। संत पापा फ्रांसिस अपने परमाध्यक्षीय काल की शुरुआत से ही महिलाओं के सम्मान के महत्व के बारे में मुखर रहे हैं। वे इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि एक महिला या उसके शरीर के साथ दुर्व्यवहार ईश्वर की निंदा है, और उन सभी महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो शोषण और हिंसा के शिकार होती हैं। उनका यौन कर्मियों के रूप में उपयोग किया जाता है, युद्धों और संघर्षों में उनकी तस्करी, हमला और बलात्कार किया जाता है, साथ ही वे हिंसा और भेदभाव के कई अन्य दैनिक परिदृश्यों में पीड़ित हैं। उधर 152 अफगान शरणार्थी गुरुवार को अभूतपूर्व मानवतावादी कॉरिडोर परियोजना के बदौलत रोम के फ्यूमिचिनो हवाई अड्डे पहुंचे। इस्लामाबाद से यात्रा करने वाले शरणार्थियों का रोम के फ्यूमिचिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संत इजिदियो समुदाय के अध्यक्ष मार्को, इतालवी धर्माध्यक्ष सम्मेलन के महासचिव महाधर्माध्यक्ष जुसेपे बटूरी, कारितास इटालियाना के निदेशक और इटली में एवांजेलिकल कलिसियाओं के संघों के परिषद के एक सदस्य द्वारा स्वागत किया गया। अफगान शरणार्थी जो अगस्त 2021 में तालिबान शासन के अधिग्रहण के बाद अपने देश से भाग गए थे और जिनमें से कई एक साल से अधिक समय से पाकिस्तान में रह रहे थे, इटली के विभिन्न क्षेत्रों में इतालवी संघों, धार्मिक समुदायों और नागरिकों द्वारा अपने घरों में इनकी मेजबानी की जाएगी। यूरोप में उनका आगमन ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान दुनिया के सबसे व्यापक और गंभीर भूख संकटों में से एक का गवाह बन रहा है, और सत्तारूढ़ तालिबान की ओर से अधिकारों और स्वतंत्रता के बढ़ते प्रतिबंध की खबरें आ रही हैं। परियोजना के हिस्से के रूप में उन्हें आश्रय दिया जाएगा। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और इतालवी समाज में एकीकृत करने में मदद की जाएगी, जिसमें आवास, कानूनी सहायता, भाषा कक्षाएं, बच्चों के लिए स्कूलों में नामांकन और रोजगार में सहायता शामिल है। उधर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का कहना है कि हैती में लगभग 40% पुष्ट हैजा के मामले बच्चों में है, लेकिन यह अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक है जहां कुपोषण पुराना है। हैती में 4 दिनों के दौरे के बाद यूनिसेफ ने निष्कर्ष निकाला कि हैती में भयानक कुपोषण, हैजा और हिंसा की स्थिति है और हजारों बच्चों के जीवन को खतरा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 4.7 मिलियन हैतियन, जो लगभग आधी आबादी है, तीव्र भूख की पीड़ा से पीड़ित हैं। कई इलाकों में हैजा जंगल की आग की तरह फैल रहा है, जहां उचित सीवर, पीने का साफ पानी या बोतल बंद पानी नहीं है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।